नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन की इसराइल यात्रा पर रवाना होंगे। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के पूर्वी तट पर एक भीषण तूफान ने दस्तक दी। रिकॉर्ड बर्फबारी के कारण लाखों लोग परेशान। अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांत पर पाकिस्तान के हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 13 लोगों की मौत। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन की इसराइल की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी ये दूसरी इसराइल की यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग से भी मुलाकात करेंगे। यरूशलम में इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और इसराइल एकमत हैं।
ऑन टेररिज्म फ्रंट इंडियास पॉलिसी इज वेरी,
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं हमारी नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की है। मेरा मानना है कि भारत और इसराइल की एक ही सोच है और जब भी कोई संकट आया है दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की इसराइल यात्रा को कवर करने गए हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया की यरूशलम से पेश है ये खास रिपोर्ट।
इसराइल में भारतीय समुदाय एक जीवंत और विविध समूह है जिसमें लगभग 85,000 यहूदी भारतीय मूल के लोग और लगभग 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसराइल में भारतीय यहूदी समुदाय का इतिहास कई दशकों पुराना है। इनमें से अधिकांश लोग 1950 और 1960 के दशक में भारत से इसराइल चले आए थे। जो ज्यूस लोग, यहूदी लोग भारत से यहां आए हैं वो भारत की अपनी अच्छी यादों को साथ में लेकर आए हैं। इसराइल के समाज में वे पूरी तरह से यहां एकीकृत हो गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। इसराइल में जो भारतीय नागरिक हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है जिसमें हेल्थ देखभालकर्ता के रूप में, केयर गिवर्स में, डायमंड के ट्रेडर्स हैं, आईटी पेशेवर में भी बहुत लोग हैं और यहाँ छात्र अभ्यास के लिए भी आते हैं। इसराइल की अर्थव्यवस्था में ये सब यहूदी और अन्य लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 26 फरवरी को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। श्री कार्नी 7 मार्च तक भारत में रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
ये यात्रा दोनों देशों के संबंध में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पिछले सरकार के कार्यकाल में तनावपूर्ण संबंधों के बाद कनाडा के किसी नेता की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। श्री कार्नी मुंबई में व्यापारिक नेताओं से भेंट के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वे 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों नेता स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता को गति देना है। इस व्यापार समझौते को एक वर्ष में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना करके $50 अरब से अधिक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री कार्नी से भेंट की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने आज नई दिल्ली में भारत GCC मुक्त व्यापार समझौते के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदेवी ने वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि ये वक्तव्य और 5 फरवरी को हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में शर्तें भारत और GCC देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत और GCC देशों के बीच संबंध साझा इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव में गहराई से निहित हैं और एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते से इसे और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों और जनता के बीच मजबूत संबंधों को और गति देने के लिए मिलकर काम करने की उत्सुकता व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर रणनीतिक सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन में सतत जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत जर्मनी सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विज्ञान, सतत विकास और जलवायु कार्रवाई में भारत जर्मन साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया। इसके अलावा संरक्षणवादी डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल प्रबंधन जन केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने, नदियों का जीर्णोद्धार करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ईशानी और प्रिया की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत के बहसूत तथा खोगयानी जिले के पत्तिका प्रांत के बर्मल तथा ओरगुन जिले पर किए गए पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMA ने बताया कि पाकिस्तान के हवाई हमले तथा सभी संबंधित पक्षों को शत्रुता को तत्काल रोकने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने का आग्रह किया है ताकि नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास में तैनात गैर जरूरी राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया है। अधिकारी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के निरंतर आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि यह अस्थायी कदम है और बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास कामकाज जारी रखेगा। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर अगली वार्ता बृहस्पतिवार को जिनेवा में होने की योजना है। अमेरिका के पूर्वी तट पर एक भीषण तूफान ने दस्तक दी है। इससे रिकॉर्ड बर्फबारी हुई और लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें बोस्टन, न्यूयॉर्क और ला गार्डिया सबसे अधिक प्रभावित प्रांत हैं। देश भर में आज 2000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में लगभग 94 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। वहीं न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क में 48 सेंटीमीटर से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। मध्य ईरान के फल और सब्जी बाजार में एक सैन्य हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इस्फहान प्रांत में ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण के दोचहर शहर में यह दुर्घटना हुई। ईरान में एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी दुर्घटना है। भारत और जापान के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास थर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण आज से उत्तराखंड में शुरू हुआ। एक रिपोर्ट।
भारतीय सेना और जापान की जमीनी आत्मरक्षा बल के बीच आयोजित ये सैन्य अभ्यास अगले महीने की 9 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों से 120 सदस्यीय दल भाग ले रहे हैं। जापानी दल में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं, जबकि भारतीय सेना की टीम में लद्दाख स्काउट्स के सैनिक हैं। भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित होने वाला ये अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियान चलाने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
पल्ले केले में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का लक्ष्य दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की इसराइल यात्रा पर रवाना होंगे। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के पूर्वी तट पर एक भीषण तूफान ने दस्तक दी। रिकॉर्ड बर्फबारी के कारण लाखों लोग परेशान। अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांत पर पाकिस्तान के हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 13 लोगों की मौत। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।